नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल आईईडी रोधी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत फ्रांस साझेदारी पर चर्चा के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी। सभी 31 प्रांतों में हो रहे विरोध के कारण इंटरनेट सेवा बंद। और पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली एनआईडीएमएस का शुभारंभ किया। उन्होंने इस प्रणाली को आईईडी रोधी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया एनआईडीएमएस से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तापित होगी।
श्री शाह ने कहा कि इस प्रणाली से एजेंसियों के बीच आंतरिक समन्वय और बेहतर होगा। श्री शाह ने कहा कि एनआईडीएमएस देश भर में आतंक रोधी दस्ता इकाई, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को ऑनलाइन डेटा तक पहुंचने और उसके उपयोग में सक्षम बनाएगा।
ये प्लेटफॉर्म आने से जो अनेक प्रकार के डेटा अलग अलग केस की फाइलों में पड़े हैं, वो डेटा अब एक क्लिक पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश में जितने भी हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, उसको उपलब्ध हो जाएंगे।
श्री शाह ने कहा कि ये तंत्र दोतरफा माध्यम के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि एनआईडीएमएस आगामी दिनों में एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। ये प्रणाली देश में आतंकवादियों द्वारा आईडी के इस्तेमाल या विस्फोट की घटनाओं की जांच के दौरान विश्लेषण के लिए डेटा उपलब्ध कराएगी।
जो डेटाबेस है बम विस्फोटों का, उसमें 1999 से सभी बम संबंधी डेटा यहाँ पर उपलब्ध है और अब इसकी पैटर्न, इसकी एमओ और आने वाले दिनों में उपयोग में लिए गए विस्फोटक के गुणात्मक विश्लेषण को भी ये डेटा से देश भर की पुलिस उपलब्ध कर पाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह आज मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए सामूहिक राष्ट्रीय प्रयासों की समीक्षा और आकलन पर 9वीं नार्को समन्वय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मादक पदार्थों के नेटवर्क और गिरोहों को नष्ट करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण, व्यापक जांच और मादक पदार्थों के पूर्व निर्धारित पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 दिन की गुजरात यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे और ओंकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे। वे सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अनगिनत योद्धाओं के सम्मान में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी हिस्सा लेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उल्लास ने पूरी सोमनाथ नगरी को शिवमय कर दिया है। महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के मुख्य मार्ग, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक रोशनी और सुंदर सजावट से जगमगाया गया है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर विशेष साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, जिनसे निकले मंत्रोच्चार, शिवधुन और भजनों की मधुर लहरें सुबह से ही वातावरण को भक्तिमय बना रही है। देश विदेश से आए शिव भक्त न केवल सोमनाथ महादेव के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि इस स्वाभिमान पर्व के दिव्य उत्सव के भी साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन की तैयारियों के साथ ही सोमनाथ की यह पावन भूमि अपनी ऐतिहासिक गरिमा और आधुनिक वैभव की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। सोमनाथ से राजेश भजगोतर के साथ अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
प्रधानमंत्री ने आज पवित्र सोमनाथ धाम में श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने राष्ट्र की सामूहिक चेतना को जागृत करने में इसकी प्रमुख भूमिका का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सोमनाथ धाम ने सदियों से अपनी दिव्य ऊर्जा से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने आज जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय किए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के अंतर्गत ये आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों ने आपराधिक साजिश रची। इन लोगों ने कथित तौर पर अचल संपत्ति हासिल करने के लिए रेलवे में रोजगार को माध्यम बनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर श्री मैक्रों के विचारों और रणनीतिक साझेदारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। विदेश मंत्री ने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बहुध्रुवीय और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में भारत फ्रांस साझेदारी के महत्व पर भी चर्चा की।
द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दोनों राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अत्यंत सक्रिय हैं। हम ब्रिक्स और G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम दोनों G20 के भी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए अनेक बहुपक्षीय मंचों के प्रति प्रतिबद्ध दो राष्ट्रों के रूप में मेरा मानना है कि आपसी सहयोग न केवल हमारे अपने हित में है बल्कि वर्तमान समय में वैश्विक राजनीति को स्थिरता प्रदान करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविच के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों के अंतर्गत ये बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चांसलर मर्ज 12 और 13 जनवरी को भारत की यात्रा पर आएंगे। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच हाल ही में रणनीतिक साझेदारी को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ किया। प्रसार भारती द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रचनात्मक सामग्री को प्रदर्शित करना और इसे बढ़ावा देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय पर कल हुई तलाशी के बाद प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन और शेक्सपियर सरनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने जैन के परिसर पर हुई छापेमारी में बाधा डाली। तृणमूल कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर प्रदर्शन किया। वे कल कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म IPAC कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी सांसद महुआ मोहित्रा ने कहा कि TMC सदस्यों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर IPAC कार्यालय में कल हुई तलाशी में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए इसे अनैतिक, गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक आचरण बताया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए तलाशी अभियान में बाधा डाली।
हमारे पास ये पूरा लिस्ट है, संदेश खाली, कैटल स्मगलिंग, अनुव्रत मंडल, दूरे राशन स्कीम, बगटुल मासाकार, हंस खाली रेप केस, अलप्पन बंदोपाध्याय केस, नारदा स्कैम, ये सारा हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन आज की जो घटना है, बीजेपी की ओर से हम ममता जी की भर्त्सना करते हैं।
दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली में तोड़फोड़ अभियान के दौरान तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी मामले में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच शुक्रवार की नमाज को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। महाराष्ट्र की 29 नगर निगम सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। उम्मीदवार और राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल साधनों का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत और विश्व के बीच एक मजबूत कड़ी हैं। आज प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रवासी भारतीयों ने देश की परंपराओं, विचारों और मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भाषा संस्कृति को जीवित रखती है और हिंदी भाषा के माध्यम से देश की संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रसार करना है। विश्व हिंदी दिवस पर हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन के 13 दिन हो चुके हैं। रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन अब अधिकारियों के लिए राजनीतिक चुनौती बन गए हैं। निर्वासित युवराज रजा पहलवी के आह्वान पर लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने ईरानियों से 2 रातों तक रैली करने का आग्रह किया है। राजधानी तेहरान और कई अन्य शहरों में कल इसका पालन करते हुए पूर्व राजशाही के समर्थन में नारे लगाए गए। रजा पहलवी ईरान के अंतिम सम्राट मोहम्मद रजा शाह पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं और 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से निर्वासन में है। मुख्य रूप से अमरीका में रहने वाले रजा पहलवी ने ईरान में धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र, मानवाधिकारों और सत्ता के शांतिपूर्ण स्थानांतरण का समर्थन करने वाले एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। रजा पहलवी ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और देश के अंदर तथा बाहर जनमत जुटाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
इस बीच ईरान सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के कारण पूरे 31 प्रांतों में पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है। निगरानी समूह नेट ब्लॉक्स ने बताया कि कल शाम से आज सुबह तक पूरे देश में कनेक्टिविटी बाधित रही और मोबाइल फोन सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुईं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होने तथा श्रीलंका के पूर्वी तट के करीब पहुंचने की संभावना के मद्देनजर श्रीलंका में अलर्ट जारी है। एक रिपोर्ट।
श्रीलंका के मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और आज शाम पुट्टुविल और ट्रिंकोमली के बीच तट से टकरा सकता है। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इसी बीच नेशनल बिल्डिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि प्रणाली की दिशा में बदलाव से मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में जोखिम कम हुआ है और वहां निकासी संबंधी चेतावनी हटा ली गई है। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की अपील की है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
भारत की पीवी सिंधु मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। जापान की अकाने यामागुची के मैच से हटने से पहले सिंधु ने पहला गेम 21-11 से जीत लिया था। पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री के साथ मुकाबला खेलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल आईईडी रोधी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत फ्रांस साझेदारी पर चर्चा के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी। सभी 31 प्रांतों में हो रहे विरोध के कारण इंटरनेट सेवा बंद। और पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।